الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. زکوٰۃ کے حوالے سے ہم اس موسم میں یہ پروگرام کیا کرتے ہیں، اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے شرعی احکام کیا ہیں، زکوٰۃ کے شرعی مسائل کیا ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوا کرتے ہیں، اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے بہت مشکل ٹاپک ہے. آج کا یہ پورا لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد اللہ نے چاہا تو آپ کم از کم یہ ایک نقطہ لے کر جائیں گے کہ زکوٰۃ کے مسائل بہت آسان بھی ہیں، اور جو ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ ہر چیز پر لازم ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کن چیزوں پر لازم ہوتی ہے، کن چیزوں پر لازم نہیں ہوتی، اللہ نے چاہا تو ہم ان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. بڑھتے ہیں اپنے پریزنٹیشن کی طرف. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عبادات ہیں اس کی کیا کیا اقسام ہیں. عبادات کی مختلف اقسام ہیں. پہلی قسم ہے بدنی عبادات، جیسا نماز ہے. دوسری قسم ہے مالی عبادت. ہر صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، یہ مالی عبادت کی ایک صورت ہے. اس کے بعد حج جو ہے دونوں کا مجموعہ ہے. حج کے اندر مالی عبادت ہونا بھی پایا گیا، اور حج کے اندر بدنی عبادت بھی ہونا پایا گیا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کی کتنی اقسام ہیں، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. پانچ ایسی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، پانچ چیزیں قابل زکوٰۃ ہیں کہلاتی ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. نمبر دو، مخصوص جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. نمبر تین، عشر پر زکوٰۃ فرض ہوتی، یعنی عشر کی صورت میں زکوٰۃ کی ایک صورت ہے. فصلوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کی کیا تفصیل ہے ہم انشاءاللہ العزیز آگے تفصیل سے بیان کریں گے. سب سے پہلے ہم عشر کو لیتے ہیں، کیونکہ عشر بہت چھوٹا، بہت ہی مختصر سا ٹاپک ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو. قرآن پاک نے عشر کا حکم بیان کیا ہے. عشر کی جو ادائیگی ہے وہ ضروری ہے. عشر کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا، یا عشری ہو یعنی نہر کے پانی اسے سیراب کرتے ہوں، اس میں عشر ہے. اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لاد کر لایا جائے، اس میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ ہے. اس کی تفصیل ہم یوں دیکھ سکتے ہیں گراف میں کہ وہ زمین جو نہری ہے، جو بارانی ہے، بارش کا پانی ہے یا نہر کا پانی ہے، اس میں 10% عشر کا مطلب 10% عشر نکالا جائے گا. اگر 100 من اناج ہوتا ہے تو 10 من اناج بطور صدقہ واجبہ کے، بطور زکوٰۃ کے ادا کرنا ضروری ہے. اور اگر نہر ایسی ہے جو کنویں یا ٹیوبل والی ہے، یعنی زمین ایسی ہے جس کو سیراب کنویں سے کیا جاتا ہے یا ٹیوبل سے کیا جاتا ہے، تو پھر اس پر جو زکوٰۃ بنے گی وہ نصف عشر بنے گی، یعنی 5% بنے گی. 100 من اگر فصل نکلتی ہے تو 5% جو ہے اس میں جو حصہ ہے وہ اس کا حق جو ہے وہ شریف فقیر کا ہے، مستحقین کا ہے. ہمارے ہاں غریب لوگ کہاں رہتے ہیں؟ دو جگہوں پر رہتے ہیں. شہروں میں رہتے ہیں، لیبر کی صورت میں محنت مزدوری کرتے ہیں. دوسری طرف غریب لوگ رہتے ہیں گاؤں دیاتوں میں، مزارے ہوتے ہیں، ہاری ہوتے ہیں، کھیتوں پر کام کرنے والے ورکر ہوتے ہیں. اگر کسان حضرات اپنا عشر نکالیں تو ہمارے دیہی زندگی سے غربت کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ذہن ہے لوگوں کا، مختلف آفات تو برداشت کرتے رہیں گے، کبھی بارش آ کر، کبھی سیلاب آ کر ان کی فصلیں خراب کر دیں گے، یہ ساری کی ساری آفتیں ان کی فصلوں کو پہنچتی رہیں گی، لیکن جب عشر نکالنے کی بات کی جائے تو لوگوں کا ذہن نہیں بنتا۔ یہ اس وقت گندم کا سیزن ہے اور سندھ میں گندم تیار ہو کے کٹنا شروع ہو چکی ہے، اور جیسے جیسے مہینے آگے بڑھیں گے، گندم یعنی اصلی ہوتا ہے کہ جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پیداوار پہلے ہوتی ہے اور فصل پہلے تیار ہو جاتی ہے، اور پنجاب کی راتیں ٹھنڈی ہیں، دن بھی ٹھنڈے ہیں ابھی، تو یہاں عام طور پر اپریل تک جا کر گندم تیار ہوتی ہے۔ تو وہ کسان جنہوں نے گندم اگائی ہوئی ہے اس کا عشر ادا کریں، اور سب سے پہلے حقدار کون ہیں؟ آپ کے پاس قریب قریب و جوار میں اس بستی کے رہنے والے لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں، یہ عشر آپ انہیں ادا کریں۔ وہ مستحق لوگ ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اپنا جو ہے وہ مالی جو فگر ہے وہ تھوڑا اوپر کریں اور اپنی بنیادی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں ہر شہر، تقریباً ہر شہر میں قائم ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں، اور مطلب ملا جلی صورتحال ہے، رشتہ داروں کو بھی خیال کرنا ہے، اہل محلہ کا بھی خیال کرنا ہے، آپ کے پاس جو ورکر ہیں بطور تنخواہ کے زکوٰۃ یا عشر نہیں دینی ان کو، لیکن تنخواہ تو آپ الگ سے دے رہے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی بیمار ہیں، کیا شادی ہے، کیا کوئی اور پرابلم ہے، تو احسان کے طور پر، تبرع کے طور پر، نیکی کے طور پر ان کو زکوٰۃ یا عشر دیے جائیں تو پھر درست ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں اس کو دوں گا یا سیٹ رہے گا، تو ثواب آپ کو کہاں ملے گا، یہ بھاگے گا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، احسان کے لیے دینا ہے، زکوٰۃ ہو، عشر ہو، صدقات واجبہ ہوں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم نے ادا کرنی ہے، شرن ادائیگی ہمارے اوپر بغیر کسی غرض کے ادا کرنی ہے، کوئی غرض ہم نے سامنے نہیں رکھنی۔ ہم نے پڑھا کہ تین چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے، پہلی چیز تھی فصلیں، فصلوں کی تفصیل ہم نے جانی، بہت مختصر سی تفصیل تھی۔ جو دوسری چیز ہے وہ ہے جانور، جانوروں کی دو کنڈیشنز ہیں، بعض صورتوں میں جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت ایک غالب حصہ ہے جانوروں کا جن پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ اس بات کو تفصیل جب بیان کروں گا ہم سمجھ پائیں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کن جانوروں پر زکوٰۃ ہے، وہ جانور جن کو بیچنے کے لیے خریدا ہو، مطلب شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ عید پر جانور بیچنے کے لیے خرید رہے ہیں، انہیں پال رہے ہیں، ان کی جو نیت ہے وہ ہے مال تجارت کی، ایز اے ٹریڈنگ گوڈس کے انہوں نے یہ آئٹمس خریدے ہیں، تو یہ تو وہ جانور ہو گئے کہ جو مال تجارت ہیں، ان پر زکوٰۃ بلا شبہ فرض ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، وہ جانور جن سے بچے یا دودھ لینا مقصود ہو یا محض فربا کرنا مقصود ہو اور سال کا اکثر حصہ مفت چرتے ہوں، ایسے جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ جو لوگ باڑے جنہوں رکھے ہوئے ہیں، خرید کر چارہ ڈالتے ہیں، وہ جانور اس شرط پر پورا نہیں اترتے، کیونکہ انہیں خرید کر گھاس ڈالنا پڑتا ہے، اور باڑے والے اگر انہوں نے بیچنے کے لیے جانور رکھے ہیں تو زکوٰۃ ہوگی، بیچنے کے لیے سے خریدے تھے، اور اگر انہوں نے دودھ کے لیے رکھے ہیں تو اس جانور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، دودھ کے لیے رکھے ہیں، بچوں کے لیے رکھے ہیں، ان جانوروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ دو صورتیں تھیں جانوروں کی جس میں زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی۔ اب ہم آتے ہیں دو ان صورتوں کی طرف جن میں جانوروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی، جس کو سال کا اکثر حصہ خرید کا چارہ ڈالنا پڑتا ہو، آپ لوگوں نے ساتھ دینا میرا بھی، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پہلے والی صورت کی اپوزٹ صورت ہے۔ تو اگر جنگل میں چرتے ہیں، کھلا چرتے ہیں، اور ان کا مقصد فربا کرنا ہے اور دیگر جو باتیں بیان ہوئیں، تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ وہ جانور جو ہوں تو بیچنے کے لیے लेकिन आपने उनको बेचने के लिए खरीदा नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद जानवरों के बच्चे हैं। अंडे खरीदे थे, उसमें से मुर्गियां निकली हैं। तो माले तिजारत उस वक्त कहलाएंगे कि जब आपने बेचने के लिए खरीदे हों। इसमें खरीदारी तो पाई नहीं गई, ये तो अफजाइश हुई है। तो इन जानवरों पर बेशक आप बेचने की नीयत करें, इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, क्योंकि जो शर्त एक है वो इसमें नहीं पाई गई। तो ये वो सूरत है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुई। चूँकि मैं इस वक्त मुखातिब हूँ सियालकोट के ताजरान से, ये एक सनअती शहर है, ये जो है वो लाइफ स्टॉक के हवाले से मशहूर शहर नहीं है, लेकिन चूँकि बन्नी चैनल की नशरियात दुनिया भर में जा रही हैं, तो हमने ज़िमनी तौर पर इस मौजू को भी कवर करने की कोशिश की, ताकि जिन लोगों का ये काम है वो भी ये सुन सकें। अब हम असल हिस्से की तरफ आते हैं, जो ख़ास आपकी दिलचस्पी का बायस होगा, कि ज़कात जो है जानवरों के अलावा, फसलों के अलावा किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ज़कात जब भी फ़र्ज़ होगी, इसके फ़र्ज़ होने के लिए क्या शराइत पाई जाएंगी। मुसलमान पर फ़र्ज़ होती है, बालिग होना शर्त है, विरासत में नाबालिग के पास भी माल आ जाता है। किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, बालिग नहीं हुआ बच्चा, वो करोड़ों अरबों रुपए का मालिक बन गया, नहीं, ज़कात उस पर फ़र्ज़ नहीं होगी। बालिग बहुत सारे अहकाम में मुकल्लफ नहीं है, वो मुकल्लफ है तो ईमान व अकीदे के मामले में मुकल्लफ है जबकि समझदारी को पहुँचे, वरना वो मरफूल कलम है। आकिल होना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बालिग तो होते हैं, कमाया खाया होता है, लेकिन बुढ़ापे में आके सठिया जाते हैं। सठियाना खैर अकल के खिलाफ नहीं है, डिफरेंट सूरत हाल होती है। अगर सूरत हाल ऐसी है कि अकल सलामत नहीं है तो, और पूरा साल उसकी एक कैफियत रही, उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। कुछ लोग वो होते हैं, बाज़ औक़ात इफाका हो जाता है, बाज़ औक़ात अकल जो है वो सल्ब हो जाती है, ज़ायल हो जाती है, मिली जुली कैफियत रहती है। इनके केस को देखकर फैसला होगा कि इन पर क्या हुक्म जारी होता है। चौथी जो शर्त है, क्या है जनाब? माल का बकदर निसाब मिल्क में होना। जिन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है, शरीयत मुतहरा ने उन चीज़ों की एक क्वांटिटी लॉक की है, अगर इतनी होंगी तो ज़कात फ़र्ज़ है वरना नहीं। इसी क्वांटिटी का नाम निसाब है। इसी क्वांटिटी का नाम क्या है? निसाब है। इसकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे। पूरे तौर पर काबिज़ होना, निसाब का देन, देन कहते हैं कर्ज को, कर्ज से फारिग होना। किसी के पास 15 लाख रुपए हैं लेकिन 16 लाख रुपए का कर्जा है, तो ये तो माइनस में चला गया। तो कर्जा निकाल के निसाब बचता हो, ये जरूरी है। निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना, जिस तरह कर्जा निकाला जाता है, इसी तरीके से करंट महीने के जो एक्सपेंस है आपके, बुनियादी एक्सपेंस, घर का राशन, घर का खर्चा, किराया, यूटिलिटी बिल्स, ये हाजत असलिया में आते हैं, इसको भी माइनस करेंगे। माल का नामी होना, पांच चीजें ऐसी हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो इस शर्त पे पाई जाती हैं। साल का गुजरना, किसका गुजरना? हम इसकी तफसील में भी अल्लाह ने चाह तो जाएंगे। अब पीछे जितनी बातें बयान हुई हैं, एक एक की तफसील बयान कर रहे हैं। ये सबसे अहम स्लाइड है आज के पूरे लेक्चर की, कि दुनिया में आप, हम जिस शादी हाल में बैठे हैं इसमें आप गिनती शुरू कर दें जी, ये प्लास्टिक का एक आइटम है, ये फोन है, ये लकड़ी है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट नाम होंगे। दुनिया भर में लाखों करोड़ों अरबों चीज़ें पाई जाती हैं। ज़कात सिर्फ पांच चीज़ों पर फ़र्ज़ है, हमने उनको माइनस कर दिया, फसलों को और जानवरों को माइनस कर दिया। बाकी ज़कात कितनी चीज़ों पर फ़र्ज़ है? पांच चीज़ों पर। कितनी आसानी है शरीयत मुताहरा की। पहली चीज़ है सोना। सोना किसी भी शेप में हो, बिस्किट की शेप में हो, जेवर की शेप में हो, औरत इस्तेमाल करती हो, इस्तेमाल ना करती हो, बच्चों के जहेज के लिए रखा हो, सेविंग के लिए रखा हो, जिसकी मिल्कियत में होगा हम उसकी मिल्कियत को लेकर चलेंगे। ज़कात हमने सुना बालिग पर फ़र्ज़ है, तो जो बालिग है उसकी मिल्कियत में जो चीज़ है हम उसकी एक बैलेंस शीट बनाएंगे, हाँ भाई उसके पास ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है क्या ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो ये बातें मैंने इसलिए बयान की कि बाज़ औक़ात ख़वातीन की तरफ से सवालात आ रहे होते हैं, ये तो हमारे इस्तेमाल में है। सोना किसी भी शेप में हो, इस पर शराइत पाए जाएं तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। नंबर दो, चांदी। चांदी का भी यही मामला है, किसी भी शेप में हो, इस्तेमाल में हो ना हो, शराइत पाए जाएं तो इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। जो तीसरी चीज़ है वो है करेंसी। करेंसी पाकिस्तानी हो, डॉलर हो, रियाल हो, कोई भी करेंसी हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। बिटकॉइन है, डिजिटल करेंसी के नाम पर जो प्रोडक्ट मार्केट में आई है, इसको हम करेंसी मानते ही नहीं हैं। नाम लोगों ने करेंसी रखा है, लेकिन करेंसी की तारीफ ये है, गुड्स के मुकाबले में काउंटर वैल्यू के तौर पर जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो करेंसी कहलाती है। आप ख़रीदारी करते हैं उस चीज़ से, ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, ठीक है। हम करेंसी निकाल कर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदते हैं, तो करेंसी हमेशा जो गुड्स है उसके काउंटर वैल्यू के तौर पर, उसके मुआवजे के तौर पर इस्तेमाल होती है। बिटकॉइन ज़्यादा से ज़्यादा एक इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा बस, और वो भी है कि नहीं है इसमें भी उलमा को इख्तिलाफ है। हमारा फतवा ये है कि डिजिटल करेंसी की खरीदो फरोख जायज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गरर है, इसके अंदर धोखा है, मार्केट इतनी अप डाउन है, इतनी सुरतें हैं अजीब व गरीब, तो हमने इसके जवाब का फतवा नहीं दिया। पाकिस्तान में वैसे भी गैर कानूनी है, FIA पकड़ लेती है, छापे पड़ते हैं, और मुल्क के लिए इंतहाई शदीद नुकसानदेह है। एक बिटकॉइन की कीमत आजकल तो पता नहीं कितनी चल रही है, मालूम है किसी को भी? पहले तो थी 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, अब डॉलर महंगा हुआ तो सत्ता और बढ़ गई हो। भाई एक कंप्यूटर का कोड बंदा खरीदता है 30-40 लाख रुपए देकर, 30-40 लाख रुपए में फैक्ट्री लग जाती है, फैक्ट्री लगती है, मसनूआत तैयार होती हैं, बाहर जाती हैं, एक्सपोर्ट होता है, मुल्क में डॉलर आता है, लोकली लेबर को काम मिलता है। 30-40 लाख रुपया एक कंप्यूटर के कोड में आपने रख दिया, इसका पासवर्ड भूल गए तो गए काम से। उसका ऐसा कोई फिजिकल इस्तेमाल नहीं है, दुनिया में थोड़ा सा चेंज आया, पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगी। तो यूँ उसके अंदर गरर है, अनसर्टेनिटी है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। चौथी चीज़ है प्राइस बॉन्ड। प्राइस बॉन्ड जो है, बाज़ लोग कहते हैं कि जायज़ नहीं है। दो तरह के प्राइस बॉन्ड होते हैं, 2-3 सालों से एक प्राइस बॉन्ड की नई किस्म पैदा हुई है मार्केट में, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड कहलाते हैं। ये खालिसतन सूदी प्राइस बॉन्ड है। ये प्राइस बॉन्ड हमारे इस लिस्ट में शामिल ही नहीं है, इस वजह से कि वो तो सिर्फ एक रसीद है, असल तो वो सेविंग अकाउंट है जिस पर सूद मिलता है, और एक सूदी स्कीम है जिसमें पढ़ना जायज़ भी नहीं है। ये जो दूसरे प्राइस बॉन्ड हैं जो पुराने हैं, इन प्राइस बॉन्ड की जो हैसियत है वो ट्रेडिंग गुड्स की है, ट्रेडिंग गुड्स के तौर पर ये अपना वजूद रखते हैं। जिस तरह डाक का एक टिकट होता है, जिस तरीके से अब स्टाम्प पेपर होता है, डाक का टिकट एक ही एरिया का है लेकिन उसकी कीमतें डिफरेंट हैं, स्टाम्प पेपर एक ही पेपर है, A4 का पेपर, उसकी कीमतें डिफरेंट हैं, और उस डिफरेंट कीमतों की वजह से आप उसको खरीद रहे होते हैं। तो प्राइस बॉन्ड एक खुद गुड्स है, अगर गुम हो जाए तो आपके पैसे चले जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि रसीद नहीं है, रसीद होती तो आप असल से जाकर रिकवर कर लेते। सौदों के अंदर इस्तेमाल भी होता है। यहाँ का रेशियो मुझे नहीं पता, कराची में तो बहुत ज़्यादा है। कोई प्रॉपर्टी किसने खरीदी है, इतना कैश देंगे, इतना प्राइस बढ़ देंगे। तो यूँ एज ए इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, ट्रेडिंग गुड्स के तौर पर इसकी अपनी हैसियत है और माले तिजारत में ये शुमार होता है। पांचवी चीज़ है माले तिजारत, वो चीज़ जो आपने बेचने के लिए खरीदी है, वो चीज जो आपने बेचने के लिए, किसी ने घर लिया रहने के लिए, ये शर्त पाई गई कि नहीं? नहीं पाई गई। किराए पर चलाने के लिए घर लिया, ये शर्त नहीं पाई गई। ट्रांसपोर्टर है, उसकी गाड़ियां चलती हैं किराए पर, एक गाड़ी करोड़ों रुपए की होती है, तो वो गाड़ी उसने बेचने के लिए नहीं खरीदी, किराए पर चलाने के लिए खरीदी है। तो माले तिजारत से मुराद है कि जिसको आप खरीदते हैं बेचने के लिए, तो वो तैयार प्रोडक्ट्स हों, जैसे किसी करियाने की दुकान है तो माले तिजारत है, जो भी उसकी दुकान में रखा हुआ है बेचने का सामान, कुछ सामान फर्नीचर होगा, कुछ अलमारियां होंगी, ये बेचने के लिए नहीं है। ऑफिस है किसी का, उसमें बहुत बड़ा आलीशान फर्नीचर है, कंप्यूटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो बेचने के लिए नहीं है, इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। तो यूं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं, जब हम उनको देखते हैं तो वो बेचने के लिए नहीं होंगी। फैक्ट्री वाले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदने का मकसद होता है प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे, तो ये रॉ मटेरियल जो है पार्ट ऑफ दी प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए इस रॉ मटेरियल पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। अलबत्ता जो मशीनरी, भारी भारी मशीनरी फैक्ट्रियों में लगी हुई हैं, क्या वो बेचने के लिए है? नहीं, उन मशीनरीज पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि वो बेचने के लिए नहीं है, माले तिजारत नहीं है। हाँ, किसी का काम ही मशीन बेचने का है, तो जाहिर बात है अब उसके लिए ये आइटम्स जो हैं वो ट्रेडिंग गुड्स होंगे और ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो ये पांच चीज़ें हैं जो काबिले ज़कात अम्वाल हैं। हम आपके सवालात की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। जी, हाथ खड़ा कर लें।
जी हजूर, सवाल ये है कि एक बंदे के पास मशीनरी वो खरीदता है पुरानी, उसमें से कुछ स्क्रैप में चली जाती है उसकी, और कुछ पार्ट्स उसके जो है ना वो स्क्रैप में नहीं जाते, उसके यूटिलाइज होते हैं, उनसे वो मतलब स्क्रैप वाली कीमत का नफा नहीं लेता, दूसरा नफा लेता है, अच्छा खासा नफा लेता है। तो उसका जो स्क्रैप में माल पड़ा है, मसलन 10 मशीनें हैं, उसमें से हो सकता है पांच वो जो अच्छी खासी जो कीमत वाली चीजें हैं वो निकल आए। ऐसा बंदा जब ज़कात दे तो वो स्क्रैप वाले रेट का हिसाब लगाएगा उसका सामान्य तिजारत के लिहाज से, या फिर वो जो पार्ट्स उसके आला कीमत के हैं उनका म्यारी कीमत में हिसाब लगाएगा?
अब जैसे गुजरावाला की इंडस्ट्री है, इसमें बाहर से एसी आते हैं, ठीक है। अब उस एसी से कुछ लोग तांबा निकालते हैं, उनका असल मकसद तो तांबा निकालना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एसी के अंदर बाकी चीज़ें नकारा हैं, बाकी जो चीज़ें हैं प्लास्टिक है, नट बुलट हैं, ये भी स्क्रैप में जाते होंगे। तो चार आइटम निकल आए, मजमूई तौर पर इसकी कीमत लगाने के बजाय अलग अलग इसकी मार्केट वैल्यू लगाई जाएगी। जो आइटम महंगा है उसकी वही वैल्यू लगेगी, मार्केट में क्या है, जो सस्ता है उसकी वही वैल्यू लगेगी। तो यूं ये जो इसने मशीनरी खरीदी है खोल के बेचने के लिए, स्क्रैप करने के लिए, तो ये माले तिजारत तो उसी वक्त बन गई, ठीक है। माले तिजारत तो ये उसी वक्त बन गई। अब जो अगला काम है, जो अगला अगला जो मरहला है, वह है हिसाब लगाने का। असल आपका सवाल है कि इसका हिसाब कैसे लगाया जाएगा। तो जो चीज़ इसमें निकलती है, जिस मालियत की है, उसी मालियत को सामने रख के ज़कात निकाली जाएगी। जी, अगला सवाल लेते हैं।
मेरा नाम अवैस सलीम।
माशाल्लाह।
हज़ूर, मेरा सवाल ये है कि मतलब कि अगर कोई सामान लिया है माले तजारत, उस वक्त नियत है कि बेचेंगे, कुछ ऐसा मामला तो है कि वो अभी बेचने के काबिल नहीं, या वो मतलब आउट ऑफ सीजन, या ऐसा कुछ मामला तो हो गया है, तो उस पर भी ज़कात साल के बाद होगी, या वो मतलब वो स्क्रैप के जो भी मामला तो होंगे आपने इरशाद फरमाया?
देखें, जो आपका सवाल है ना, आपका सवाल घर के मुतालिक नहीं है, गाड़ी के मुतालिक नहीं है, उस चीज़ के मुतालिक है जो आम तौर पर बेची जाती है। मशीनरी होगी, कुछ बाज़ अवकात अनाज होता है, किसी ने जैसे आजकल सरसों आ रही है, ठीक है, सरसों लेकर रख ली, अब आउट ऑफ सीजन हो गई, तो अगर तो बेचने की नीयत बरकरार है तो ज़कात में तो हिसाब करेंगे इसका। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बंदे की नीयत ही बदल जाती है, जैसे घर बेचने की नीयत से खरीदा था, बाद में नीयत यह हो गई कि नहीं अब इसको रखते हैं, ये बच्चों को गिफ्ट दे देंगे, ठीक है, अच्छा, या फिर इसको किराए पर चढ़ा देते हैं। इस सूरत के अंदर जो तिजारत की नीयत है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई, अब तिजारत की नफी हो गई, तो इस सूरत के अंदर तो ज़कात फर्ज नहीं होगी। लेकिन डिले हो रहा है, सिर्फ फौरी नहीं बेच रहे आप, तो डिले होने से नीयत तो बरकरार है ना, पार्टी लग गई, कीमत बढ़ गई, मार्केट उठ गई, आप उसको बेचेंगे बेचेंगे, तो यूं वो इस शर्त पर पूरी उतर रही है। जी और सवाल लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला।
मोहसिन रजा अर्ज़ कर रहा हूँ।
जी
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि जैसे आपने फरमाया कि अगर हम गाड़ियाँ खरीदते हैं कि किराए पर देंगे, अगर कोई शख्स इस नीयत से गाड़ी खरीदता है कि ये मैं इतने साल किराए पे चलाऊंगा, बाद में ये बेच दूंगा, तो क्या इस पर ज़कात का क्या हिसाब होगा?
इस पर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि जब इसने खरीदी है तो उस वक्त तिजारत की नफी पाई गई। बात की जो सूरत आल है वो एक इरादा है, खरीदते वक्त तिजारत की नीयत पाया जाना जरूरी है। जी एक दो सवाल और ले लेते हैं। जी पूछिए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला।
मोहम्मद सलीम फ्रॉम जियो रेसिंग। मैं एक बिजनेसमैन हूँ
माशाल्लाह।
और सवाल ये था कि अगर कोई एक बालिग बच्चा है और उसके सास्ते में काफ़ी बड़ी मालियत है
ठीक
मगर
है,
वो अब नॉर्मल है तो क्या उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी?
एब नॉर्मल दिमागी तौर पर
जी
मैं अर्ज करता हूं, असल में एब नॉर्मल जो ना वो दो तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो अपनी उम्र से दो तीन साल पीछे होते हैं, और दो तीन साल पीछे होने की वजह से स्लो लर्निंग होते हैं, अकल उनकी सलामत होती है, बोलते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन आम बच्चों से वो पीछे होते हैं काफ़ी, कोई 2 साल पीछे, कोई 3 साल, कोई 5 साल, लेकिन शऊर रखते हैं वो बच्चे। बहुत सारे इस तरह के बच्चे आपको काम करते हुए मिलेंगे, इस तरह के बच्चे आपको जो है वो किसी दुकान पर भी खड़े हुए मिलेंगे, सेल मैनिंग कर रहे हैं, तो अगर तो ये कैफियत है तो अकल सलामत है। और अगर दूसरी सूरत आल है कि बिल्कुल मस्त हैं, जिसको हम पागल कहते हैं, तो अकल सलामत ना होने की वजह से उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, पहली सूरत में होगी। कुरान पाक ने जो पहली किस्म है ना इसका जिक्र किया है। कुरान पाक ने कहा कि बच्चों की उम्र अगर ऐसी है कि उनके अंदर पुख्तगी नहीं है, बालिग हो गए, उनकी माल की हिफाजत की जाए, उनके हवाले फौरन ना करें। जब तुम ये देखो कि ये बच्चे जो हैं इस खूब समझदारी को पहुंच गए, तब ये माल इनके हवाले कर दो। तो ये जो सवाल आपने पूछा है इस कैफियत को कुरान पाक ने भी बयान फरमाया है, फइन आनस्तु मिनहुम रुश्तन फदफाउ इलैहिम अमवालहुम। फरमाया गया कि जो यतीम लोग हैं, मतलब उनके वालदेन नहीं है, किसी और के पास माल है, अगर बच्चे इस तरह के हैं, बालिग तो हो गए हैं लेकिन समझ उनकी कच्ची है, तो उनके हवाले उनके माल ना करो, सूरह निसा की आयत नंबर 9 है। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि
वालेकुम
वबरकातुहू।
सलाम
मेरा नाम
वरहमतुल्लाह।
मोहम्मद शब्बीर अतारी है।
जी
मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि हमारे इधर अक्सर छोटे छोटे यूनिट हैं, उनमें एक मेरा भी यूनिट है, तो उसमें तकरीबन 10 से 15 कारीगर काम करते हैं। तो हमने उनको एडवांस पेशगी के तौर पर जो रकम दी है वो आया निसाब में शामिल कर सकते हैं या नहीं?
तशरीफ रखिए। इस रकम को अकाउंट की दुनिया में रिसीवेबल कहेंगे, जो आपने रिसीव करनी है, इस पर ज़कात बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब मालिक तो आप हैं ना उस रकम के। रोलिंग में यह रकम ताजरों की मुख्तलिफ अंदाज में रिसीवेबल होती है, माल बेचा है उन्होंने और पैसे अभी आने हैं, ज़कात तो बनेगी, और एहतियात इसमें है कि साल के साल ऐसी रकम पर ज़कात निकालते रहना चाहिए। लेकिन जो रकम आपके हाथ में नहीं है, रिसीवेबल है, उसमें ताखीर की गुंजाइश है। उसकी तफसील हम आगे जाके एक पूरे चार्ट के ज़रिए आपके सामने रखेंगे और तफसील से बयान करेंगे। आखिरी सवाल ले लेते हैं, फिर हम आगे स्लाइड्स की तरफ चलते हैं।
अलैकुम,
वालेकुम
मेरा
सलाम।
नाम मुबशिर है।
जी मुबशिर,
मेरे 4-5 सवाल हैं। वैसे
या अल्लाह खैर।
पहला एक सवाल सोने से मुतालिक है। सोने और चांदी का जो ज़कात के लिए इसका हिसाब जो है वो किस तरह से करेंगे, मतलब हालिस सोने से करेंगे या उसमें स्टोन वगैरह निकाल के इम्प्योरिटी जो उसकी होती है वो निकालेंगे। पहला क्वेश्चन।
देखें, सिर्फ स्टोन निकालेंगे, मिलावट नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। मिलावट जब कम हो, जैसे आमतौर पर जेवरात जो हैं वो 24 कैरेट से नहीं बनते। उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू आप वही लेंगे। अगर वो 18 कैरेट का सोना है तो 18 कैरेट का की वैल्यू ही लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे जी खोट मैं अलग करूँगा। खोट अलग नहीं करेंगे, जो उसकी वैल्यू है वो वही लेंगे जितने कैरेट का वो सोना है। अलबत्ता स्टोन उसके वजन में शामिल नहीं होंगे।
मतलब जितने कैरेट का गोल्ड है उस मतलब उसमें से फिर खोट माइनस हो गई ना। 24 कैरेट अगर खालिस हो गया तो 18 कैरेट उसमें खोट डाली तो फिर वो हुआ, तो खोट अलग हो गई तो फिर वो प्योर जो बिछे रह
दो
जाएगा।
दो बातें हैं, देखें
जी
दो बातें हैं। अब किसी के पास जितनी ज़कात बन रही है, एक अंगूठी निकाल दें तो ज़कात पूरी हो जाएगी। आपने तो कुछ भी नहीं निकाला। आपने जब ज़कात सोने से दी है तो अब तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी कुछ भी। जब हम पैसे की तरफ जाते हैं तो फिर हम उसकी वैल्यू की तरफ जाते हैं। जब ज़कात सोने की ज़कात सोने से निकालेंगे तो फिर हमें खोट अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मसला है।
मतलब यानी अगर हम सोने की ज़कात सोने से निकालेंगे तो फिर उतनी उतना ग्राम माइनस हो जाएंगे, और अगर अमाउंट में जाएंगे तो फिर उसकी वैल्यू लगाएंगे।
वैल्यू लगाएंगे।
ठीक है, और उसमें मतलब जो स्टोन्स हैं वो माइनस हो जाएंगे,
स्टोन उसके वजन में शामिल नहीं होंगे।
और सोना जैसे कीमती धात अभी आजकल जैसे प्लाटिनियम या प्लैटिनम या डायमंड है उसके ऊपर ज़कात नहीं है,
हीरे पर भी नहीं है,
हीरे पर भी नहीं है।
सिवाय इसके कि किसी की दुकान है बेचने के लिए रखे हुए हैं या किसी ने तिजारत के लिए खरीद वो खरीदे हैं। बहुत सारे इस्लामी बैंक अमारात में, दुबई में प्लेटिनियम वगैरह के शेयर बेचते हैं, तो वो माल तिजारत में आ जाएंगे।
नहीं, जैसे मेरा भी सोने का ही काम है तो उसमें जैसे हमारे पास शॉप पे डायमंड हीरे या कीमती पत्थर
आपके जो हीरे हैं, आपके जो नगीने हैं ना, उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी,
उस पर, तो उसकी वैल्यू जो है वो हम मतलब किस तरह से
मार्केट
जीव
मार्केट वैल्यू से
सेल वैल्यू या परचेज,
नहीं। सेल में तो आप सोने के भाव बेचते हैं।
मतलब परचेज वैल्यू पर फिर।
देखें, ये जो नगीने हैं इसकी 3 मार्केट हैं। एक सुनार की दुकान जिसमें वो कस्टमर को सोने के भाव बेचता है, ये नगीने सोने के भाव नहीं लगाए जाएंगे। एक वो मार्केट है जिससे आप खरीदते हैं, नगीने की अपनी एक मार्केट होगी ना,
जी
उस मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है उसका हिसाब लगाया जाएगा। अलबत्ता जो नगीना सुनार के पास है, चूंकि ये बेचने के लिए, तो सुनार उस पर ज़कात देगा।
वो नगीना चाहे हीरा है चाहे रूबी कोई
कुछ
भी,
भी कुछ भी
अच्छा
है,
कुछ भी,
कुछ
और
भी
उसमें जो कीमती धातु सोना चांदी के अलावा जैसे प्लैटिनम या प्लैडियम
बेचने के लिए कोई भी माल हो, मट्टी भी अगर कोई बेच रहा है, मट्टी उस पर भी ज़कात देगा।
प्राइस बॉन्ड जो है, जैसे अगर कोई जो एक आपने दो बयान किया ना, एक तो जिसमें वो फिक्स प्रॉफिट मिलता है वो नहीं, जो पहले वाले हैं पुराने वाले, उस प्राइस बॉन्ड अगर पड़े हैं 1 साल से ज़्यादा और उसके ऊपर इनाम निकला है, और उस इनाम के ऊपर भी होगा और प्लस प्राइस बॉन्ड की जो वैल्यू उस पर भी होगा,
देखिए, इनाम करेंसी में आ गया ना, करेंसी में आ गया,
ठीक,
तो
और
ज़कात बनेगी उस पर
बनेगी।
शरायत पाए जाने पर।
और माल तजारत जिसमें आपने यदि घर या प्लॉट या कोई ऐसी जमीन आप परचेज करते हैं आज सेल के लिए ली, लेकिन वो 2-3-4 साल बाद मतलब सेल करते हैं, तो उसके ऊपर फिर अमाउंट का डिफरेंस इतना ज्यादा आ जाता है। आज आप 1 लाख रुपए मरला लेते हैं, 4 साल बाद वो 10 लाख रुपए हो जाती है, वो जो डिफरेंस है वो फिर कैसे निकलेगा 4 साल बाद का।
हाय सुनार साहब, कोई और बंदा बात करता है ना तो मेरी आह ना निकलती। मैंने पिछले साल ये स्लाइड चलाई थी ना, तो उसमें सोने का रेट था 1,96,000 रुपये। 23 मार्च को प्रोग्राम किया था मैंने, और आज सोने का रेट है 1,99,000, जो को मार्च का मैंने लिखा है इसमें, ठीक है। तो आपके मार्केट में भी रेट बढ़ गया ना, जिस साल जो रेट हो उसके हिसाब से।
नहीं, देखिए देखिए, सोने के ऊपर तो एक है ना कि 2.5% आपने देनी है, तो जमीन प्लॉट के ऊपर तो इस तरह का नहीं है ना।
एवरीथिंग जिस चीज़ पर ज़कात फ़र्ज़ है, जिस चीज़ पर भी ज़कात फ़र्ज़ है 2.5% ज़कात है।
नहीं नहीं मेरा सवाल मतलब ये है कि जैसे प्लॉट खरीदा आज आपने 1 करोड़ रुपए का, 2 साल बाद उसकी कीमत अगर 3, जब बेचेंगे तो ज़कात होगी या हर
नहीं,
साल
नहीं,
उसकी अमाउंट
हर
बनेगी?
साल उसकी क्या वैल्यू है? सोना कौन बेचने के लिए खरीदता है? शादियों में जो सोना लोग लेके जाते हैं, क्या वो बेचने के लिए खरीदते हैं? इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं। कम लोग बेचने के लिए खरीदते हैं, तो इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं, तो हर साल जो वैल्यू है उसके हिसाब से ज़कात देंगे। ये
ठीक,
बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे सवाल थे माशाल्लाह आपके। आ जाते हैं जनाब, इन 5 चीज़ों के बाद बहुत सारी चीज़ों का जवाब आ गया और अब जो सवाल हुए हैं इससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है? घरेलू इस्तेमाल की अशिया, इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है जनाब। अच्छा, ज़ाती घर, इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ज़ाती गाड़ी, इस पर फ़र्ज़ नहीं है। किराए पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट, थोड़ा सा अगर साथ दे देंगे मैं तो अच्छा होगा, ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। चलें जनाब, जिन जानवरों को तिजारत के लिए ख़रीदा, इनकी बात नहीं कर रहे हम, लेकिन इनसे जो बच्चे पैदा हुए उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अंडे खरीदे जिनसे चूजे पैदा हुए, इन पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। पेशावरों के लिए काम के औजार, मशीन, इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। हीरे मोती जबकि तिजारत के लिए ना हो। नवादरात, इन टैक्स बहुत सारे लोगों को रखने का शौक होता है, कदीम अशिया तिजारत के लिए नहीं है, तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है जबकि वो सोने चांदी की ना हो। गैर तिजारती प्लाट या फ्लैट, इन पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। मुर्सी या काश्त या किराए पर देने के लिए खरीदी गई ज़मीन, इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। आर्टिफिशियल ज़ेवर जबकि माल तिजारत ना हो, इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। हमारा एक मौजू पूरा हो गया। निसाब क्या है, यानी चीज़ें क्या हैं और उनके मुकाबले में कौन सी चीज़ें हैं जो इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अब आ जाते हैं हम निसाब पर। सोने का निसाब 7.5 तोला है, चांदी का निसाब 52.5 तोला है, करेंसी और प्राइस बांड, माले तिजारत, इन तीनों को एक साथ आप ले लें। किसी के पास करेंसी है तो 52.5 तोला चांदी की मालियत की होनी चाहिए और प्राइस बांड भी इसी हिसाब से देखेंगे, माले तिजारत भी इसी हिसाब से देखेंगे। 8 शवाल मौजम बमुताबिक 1 मार्च 2023 सोने का जो रेट है 1,99,500, 1 लाख रुपए से ज्यादा सोना एक साल में बढ़ा है। तो कीमत से हम लगाएं, 7.5 तोला सोना कितने का बना? 14,96,250 रुपये। चांदी 2,220 रुपये पर तोला और 52.5 तोला चांदी की रकम बनी 1,16,550। तो चांदी का ये जो फिगर है कई जगहों पे इस्तेमाल होगा कि किसी के पास अगर 1,16,550 रुपये हैं तो चांदी का निसाब पाया गया, किसी के पास इतनी मालियत का माले तिजारत है तो चांदी का निसाब पाया गया, इसको ज़कात निकालना पड़ेगी। 52.5 तोला चांदी की रकम कितनी बनी जनाब? 1,16,550। कॉल चलाए।
मेरा सवाल ये है, क्या सरकारी मुलाजिम से भी ज़कात होती है और ये हमारा जीपी फंड जो करता है इसको भी ज़कात होती है?
देखिए, जीपी फंड जो है वो आपकी अपनी रकम है, आपकी रकम जमा हो रही है वहाँ पे, तो उस पर ज़कात आपकी बनेगी तो सही, लेकिन चूंकि किसी और के हाथ में है ये रकम, रिसीवेबल के हुक्म में है, रिसीवेबल में थोड़ी तफसील है, वो हम आगे जाके बयान करेंगे। बाकी सरकारी मुलाजिम हो या कोई भी मुलाजिम हो, असल चीज़ तो ये है कि आप जो भी पैसा आपको हासिल हो रहा है पूरा साल जो पैसा खाया जो कमाया उसका हिसाब नहीं है। जिस दिन ज़कात फ़र्ज हो रही है उस दिन देखा जाएगा कि आप के पास जो है वो कितनी मालियत मौजूद है।
सवाल है कि मेरा मशीनरी का कारोबार है, मैं मशीनरी से जो आमदन आती है मेरा रेंट का कारोबार है, जैसा गाड़ी रेंट का काम है, तो जो रेंट की इनकम आती है मैं उस पे ज़कात दूंगा या कि मैं मशीनरी की मालियत पे ज़कात दूंगा, जितनी मशीनरी जितनी मालियत है, लेकिन मैंने मशीनरी बेचने की गरज से नहीं ली, उसको रेंट पे चलाने की गरज से ली, तो रेंट से जो आमदन वसूल होगी उस पे ज़कात बनेगी या कि मशीनरी की जो टोटल लागत कीमत है उस पे बनेगी।
देखिए एक बात तो तय है कि इस मशीनरी पर ज़कात नहीं है, दूसरी बात यह है कि इस पूरी आमदनी पर भी ज़कात नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो आमदनी होती है आमतौर पर खर्च होती रहती है, पूरा साल क्या खर्च हुई क्या बची इसको देखा जाएगा। जिस दिन ज़कात फ़र्ज हो रही है उस दिन आपके पास कितनी चीज़ें हैं, आप जो पाँच चीज़ें हैं इन पाँच चीज़ों की एक शीट बना लें, सोना चांदी करेंसी माल तजारत प्राइस बॉन्ड, आप आपके पास कौन सी चीज़ कितनी है, जिस दिन ज़कात फ़र्ज हुई उस दिन कितनी है, अब आप उसको देखेंगे। पूरा साल एक आदमी तनख्वाहदार है, उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 12 लाख रुपए उसने कमाए, एक दिन ज़कात फ़र्ज हो रही है उस दिन उसके पास 50,000 रुपये मौजूद हैं, तो वो 50,000 को सामने रख कर अपने ज़कात का हिसाब लगाएगा, 12 लाख को सामने रख कर हिसाब नहीं लगाएगा। ज़कात टैक्स की तरह नहीं है कि आपने एक राउंड फिगर को सामने रख के ज़कात देनी है, नहीं, जो खर्च हो रहा है वो छूट है, पूरा साल जो खर्च हुआ जो आया जो गया उसका हिसाब लगाना ज़रूरी ही नहीं है, इसकी तफसील में मज़ीद भी आगे बयान करूँगा। तो यूँ एक माना में आप ये यूँ कह सकते हैं कि पूरी इनकम पर ज़कात फ़र्ज है, इस तरह नहीं है। साल का जब एंड होता है, जो ज़कात का साल पूरा होता है, उस दिन आपने हिसाब लगाना है और उस दिन सामने रख के देखना है आपने कि ज़कात के हवाले से क्या इशू है।
सवाल ये है कि मैंने तिजारत की गरज से कुछ घर बनाए कि मैंने उसको उस पर तिजारत करनी है, बेचना खरीदना, लेकिन मार्केट का मतलब डाउन होने की वजह से वो स्टॉप हो गए, वो घर मैं मतलब कम वसाइल की वजह से कंप्लीट भी नहीं कर सका, अब उस पर साल पूरा हो गया, क्या मैं उस पर ज़कात दूंगा, और अगर ज़कात दूंगा तो मेरे पास हैसियत नहीं है कि मैं उस पर ज़कात दे सकूँ, तो फिर उसका क्या तरीकाकार होगा, जब बिक जाएगा उस वक्त दे सकता हूँ या नहीं अभी देना जरूरी है।
देखिए आपके इस प्रोजेक्ट में दो तरह की चीजें हैं, एक लैंड है और दूसरा स्ट्रक्चर है। जब स्ट्रक्चर कम्प्लीट ना हो तो आपने घर की जो कीमत निकाली थी वो तो नहीं लगाएंगे आप, इस पोजीशन में उस घर की क्या वैल्यू होगी उसको सामने रख के, माले तजारत तो ये है उसको सामने रख के आप इसकी जो है वो ज़कात का हिसाब लगाएं। और रहा बात मतलब रहा सवाल ये कि आपके पास पैसे नहीं है, नो डाउट बाज़ुकात सूरतयाल भी बन सकती है कि आपके पास वाक़ियातन पैसे ना हो, कर्ज भी कोई ना देता हो, तो फिर आप इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर आपके पास और चीज़ें मौजूद हैं, सोना मौजूद है और चीज़ें मौजूद हैं, अल्लाह का अल्लाह की तरफ से वाजिब है इसको अदा करना है, पसंदीदा चीज़ें भी कुर्बान करके अदा करना है, तो ज़कात अदा करेंगे, और अगर कर्ज भी नहीं मिलता कोई और चीज़ भी नहीं है तो फिर इंतज़ार ही करेंगे। जी
अगर 1 तोला सोना और 5 तोला चांदी हो तो क्या ज़कात फ़र्ज हो जाएगी?
1 तोला सोना और 5 तोला चांदी जी हाँ, इस पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। चांदी का हिसाब हमने कितना बनाया था, 1,16,000, ठीक है, तो 1 लाख सोने की कीमत बन रही है को 2 लाख रुपए, तो चांदी मिला के जब दो चीज़ें मिल रही हूँ इन पांच चीज़ों में से तो चांदी के निसाब का एतबार है, तो ये तो चांदी के निसाब से बहुत ऊपर जा रहा है, तो ज़कात फ़र्ज होगी इस पर। जी
मेरा ये सवाल है मुफ्ती साहब से कि ज़कात की रकम बतौर तोहफा दी जा सकती है?
देखिए नियत तो आप ज़कात करेंगे लेकिन ज़कात कहकर आप दें ये ज़रूरी नहीं है, इज़्ज़त नफ्स का जहाँ तक आज़ा है सुरते हैं, कोई ऐसा बंदा है जो ज़कात कहकर देंगे तो नहीं लेगा, उसको बुरा भी लगेगा, तो आप तोहफ़ा के कर दें, ईदी के कर दें, इनाम के कर दें, दिल में ज़कात की नियत रखें काफ़ी है। जी आगे बढ़ते हैं, हम ज़कात का हिसाब कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शराइत पाई गई या नहीं, क्या पाई गई। शराइत में से एक शराइत शर्त है निसाब, ठीक है, इस तरह की और चीज़ें भी हैं। फिर हम ये देखेंगे कि आप पर साल के कौन से दिन ज़कात फ़र्ज़ हो रही है, आप पे कौन से दिन ज़कात फ़र्ज़ हो रही है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन ज़कात के दर्जनों मसाइल इस सवाल के गिर्द घूमते हैं। भाई बच्चा बालिग होता है तो नमाज फ़र्ज़ होती है, अब किस दिन बालिग हुआ वो कोई साहब नहीं है, कोई इसका एक फिक्स डेट नहीं है किसी की, हर एक अपनी जिस्मानी साख्त के अतबार से अलग अलग मौसम में बालिग हो सकता है। लेकिन ज़कात जब आपने हर साल निकालनी है तो आपने कमाना शुरू किया, कुछ लोगों को विरासत से माल मिल गया, तो जिस दिन आपके पास पहली मर्तबा निसाब पाया गया उस दिन के बाद से वही साल जब वापस आएगा तो आपके निसाब का साल पूरा होगा। ये जो लोगों ने रिवाज बना रखा है कि रमजान में ज़कात निकलती है, इसकी कोई शरी हैसियत नहीं है। हर आदमी की तारीखें आगे पीछे होंगी, किसी की कब होगी, किसी की कब होगी, इसने नौकरी शुरू की, इनकम आना शुरू हुई, खर्च होगी, कुछ बचा ही नहीं, फिर एक मौका ऐसा आया कि बचना शुरू हुआ, फिर बचते बचते निसाब तक पहुंचा, फिर वो साहिब निसाब हुआ, फिर पूरा साल गुजरा, वही दिन आया इस्लामी महीने के हिसाब से, निसाब बाकी रहा, अब इसका ये दिन मुकर्रर हो गया, अगले सालों में अब ये इसी को फॉलो करेगा। अगर किसी को याद नहीं है तो अंदाजे से एहतियात के साथ एक दिन मुकर्रर कर लें और अपनी सारी हिसाब किताब का दारो मदार उस दिन पर रखें। अभी जो सवाल मैंने जवाब दिया कि भाई एक आदमी की इनकम 12 लाख रुपए होती है, उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, साल में 12 लाख की इनकम होती है, लेकिन घर का किराया, राशन, फलां 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 चीज़ें, मुश्किल से 10 हज़ार रुपये बचा पाया वो, तो 12वें महीने उसने कितने बचाए, 1,20,000 बचाए, तो 12 लाख रुपये ज़कात थोड़े देगा वो। उस दिन जो साल का निसाब के साल का दिन है, उस दिन तो इसके पास सिर्फ 1,20,000 रुपये मौजूद है, सिर्फ इस पर ज़कात देगा। पूरा साल का हिसाब रखना भी ज़रूरी नहीं, पूरा साल जो खर्च हुआ उसका भी हिसाब नहीं, सिर्फ उस दिन कितना है ये आपको देखना होगा। तो यूं दिन का हिसाब लगाना ज़रूरी है। इसके बाद का बड़े सेंसिटिव मसाइल भी आ जाते हैं, जैसे किसी ने रहने का घर बेच दिया, 5 शबान को ज़कात किसी पर फ़र्ज़ होती है और 4 शबान को उसने रहने का घर बेच दिया, अब ये घर चेंज हो गया काइंड ऑफ लिक्विड में, अब तो ये पैसे हो गए। एक दिन पहले ज़कात का साल पूरा होने से एक दिन पहले ये पैसे हो गए, पैसों पर ज़कात फ़र्ज़ है। ये जो कहते हैं ना पूरा साल गुजरना ज़रूरी है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो दिन है ज़कात जिस दिन फ़र्ज़ होती है, उस दिन से एक दिन पहले भी आपकी मिल्कियत में सोना आया, चांदी आई, करेंसी आई, काबिले ज़कात चीज़ें आई, आपको एक दिन कि मिल्कियत पर भी उस पर ज़कात अदा करनी पड़ेगी। तो ये कुछ गलत फहमियाँ हैं जो लोगों में फैली हुई हैं, और हमारे आज के बैठने का मकसद भी यही है, कहीं इफरात है, कहीं तफरीत है, मिले जुले मसाइल हैं, तो हम दोनों चीज़ों को छांट कर जो सही और खालिस चीज़ें हैं उसको हासिल कर रहे हैं। तो आप ये तयन कर लें कि आप पर साल के कौन से दिन ज़कात फ़र्ज हो रही है, जब शरीयत आपको इख्तियार दे रही है कि भाई आपको नहीं पता किस दिन आप पर साहिब निसाब हुए, आप एक अंदाजे से एक दिन मुकर्रर कर लें तो भी कर लें, इसी में आसानी है। ये तयन कर लें कि आप पर कर्ज निकालने के बाद काबिले ज़कात चीज़ों में से क्या बचती है, कर्जे को भी माइनस करेंगे जी, हजरत अस्या को भी माइनस करेंगे। तो ये जो है सिंपली कुछ बातें हैं, जब आप कैलकुलेट करने लगेंगे तो इन चीज़ों का ख्याल करेंगे। अब हमने सुना कि सोने का निसाब 7.5 तोला, चांदी का निसाब कितना, 52.5 तोला। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के पास 7.5 तोले से कम सोना है तो वो उस पर ज़कात निकालेगा ही नहीं। इसकी दो सूरतें बनती हैं, अगर किसी के पास 7.5 तोले से कम सोना है और इन 5 चीज़ों में से कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, तो इस सोने पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। कौन से 5 चीज़ों में से, سونے کے بعد بچتی ہے چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ، مال تجارت، کچھ بھی نہیں لے تو سونا بے شک 7.25 تولے ہو، اس پر زکات فرض نہیں ہوگی. لیکن اگر اس سونے کے ساتھ کچھ کرنسی بھی ہے، جیسے عام طور پہ گھروں میں عورتوں کے پاس 7.5 تولہ سے کم زیور ہے لیکن ان کے پاس پیسے بھی ہیں ان کی اپنی ملکیت کے، اب ان کو ساتھ ملائیں گے، یا سونے کے ساتھ مال تجارت بھی ہے، اب ان دونوں کو ساتھ ملا کے چاندی کی مالیت سے نصاب دیکھیں گے. تو چاندی کا نصاب کتنا نکل رہا ہے؟ 1,16,550. 8 شعبان المعظم یکم مارچ کے حساب سے یہ نصاب نکل رہا ہے. تو اب ابھی جو ساحل نے سوال کیا، تھوڑی دیر پہلے جو سوال آیا تھا، 1 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی تھی، تو 1 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی جب ملا کے ہم چاندی کے نصاب کو دیکھیں گے تو اس سے زیادہ تھا، تو اس وقت میں زکوٰۃ بنے گی. اب ہم دیکھتے ہیں سلائیڈ ہماری کیا ہے. اموال زکوٰۃ کچھ ہوں اور کچھ نہ ہوں تو زکوٰۃ کیسے نکالے جائے گی؟ جناب یہ ایک فگر ہمارے سامنے ہے. مال تجارت کتنا ہے اس کے پاس؟ زیرو. پرائز بانڈ، کرنسی، زیرو. چاندی اور سونا کتنا تولہ ہے؟ 2 تولہ. تو اس کے یہ 2 تولہ جو سونے کی قیمت ہے چاندی کے نصاب سے بھی زیادہ ہے، چاندی کے نصاب سے. لیکن جب سونا اکیلا ہوگا، کرنسی اکیلی ہوگی، تو اس کی اپنی اپنی مالیت دیکھی جائے گی. سونا اکیلا ہے تو یہ چاندی کے ساتھ نہیں ملے گا، اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اس کی ملتی جلتی ایک اور مثال ہے، حکم سیم ہے. مال تجارت 0، پرائز بانڈ 0، کرنسی چاندی، سونا 2 تولے اور قرض 1,00,000 روپے. تو چونکہ سونا ہی یہاں پر ان چار چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور سونا بھی پورے نصاب کے برابر نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. اب اس کے اپوزٹ مثال کہ جن میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، دو چیزوں کو ملایا جا رہا ہے. جی، سونا 1 تولے ہے اور اس کی قیمت 1,99,600 روپے ہے اور کرنسی 500 روپے کسی کے پاس، چاندی کے نصاب سے زیادہ پہنچتی ہے، لہذا اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی. دوسری اس کی چارٹ دیکھتے ہیں. چاندی 2 تولے ہے، 4,400 روپے قیمت بنی. مال تجارت ہے 20,000 روپے کا. کرنسی ہے 10,000 روپے. یہ تینوں چیزیں مل کے جو ہے چاندی کے نصاب کو نہیں پہنچی، چاندی کے نصاب کو نہیں پہنچی، لہذا اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. اللہ نے چاہا تو یہ جو پریزنٹیشن ہے ہم اس کو شیئر بھی کر دیتے ہیں اپنے فیس بک پیج پہ، مفتی رزق کے نام سے فیس بک پیج ہے، تو اس پر بھی آپ اس کو تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرما سکیں گے. ہم نے سنا کہ قرض مائنس ہوتا ہے. قرض کیا ہوتا ہے؟ تو ہم سب کو قرض پتا ہے کس کو کہتے ہیں، لیکن قرض کی کچھ اور تھوڑی سی شکلیں بھی ہیں، تو ایک دہرائی کر لیتے ہیں. کسی کو آپ نے دستی قرضہ دیا ہے، یہ بھی قرض کی صورت ہے. آپ نے ادھار مال خریدا ہوا ہے، آپ نے ادھار مال خریدا ہوا ہے، تو اب آپ نے لوگوں کو پیسہ دینا ہے، تو آپ کے پاس کچھ اماؤنٹ وہ ہوگا جو پیبل ہوگا، یہ بھی قرض کی صورت ہے. بی سی ڈالی، بی سی کمیٹی ڈالی اور آپ کی پہلی نکل آئی، ٹھیک ہے جناب، 12,00,000 روپے کی ہے وہ، 1,00,000 روپے ڈالنے یا 50,000 روپے ڈالنے مثال کے طور پر، آپ نے پہلی قسط ڈالی 50,000 روپے اور پہلی نکل آئی، آپ نے 12,00,000 روپے لے لیے، لیکن آپ نے یہ 12,00,000 میں سے لوگوں کے دینے تو ہیں واپس، تو یہ جو آپ نے دینے ہیں، یہ جو پے ایبل ہیں، یہ کیا ہیں؟ آپ کے اوپر قرضہ ہیں. گھر آپ نے کرائے پر دیے ہیں لوگوں کو اور ان لوگوں سے ایڈوانس پکڑا ہے، تو وہ ایڈوانس کی رقم آپ کی اپنی نہیں ہے، پے ایبل ہے، وہ آپ نے خرچ کر لی. عام طور پر ایڈوانس کی رقم قرض کے حکم میں ہوتی ہے، خرچ کرنا بھی جائز ہوتا ہے، تو یہ بھی پے ایبل کی صورت بنے گی. ان سب اماؤنٹس کو مائنس کریں گے، किसी के पास मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए का अमाउंट बन रहा था, तो इनको माइनस करके देखेंगे चांदी का निसाब बचा के नहीं बचा, उसके मुताबिक ज़कात देंगे, ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। यहाँ बात आई किराएदारी और एडवांस की, तो बदकिस्मती के साथ आजकल मार्केटों में एक अलग अजब ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। लोग मतलब मार्केट में एडवांस है 1 लाख रुपए मिसाल के तौर पर, तो कहेंगे कि जी 20 लाख रुपए एडवांस दे दें हमें, किराया माफ़ कर देंगे। ये खालिस सूदी सूरत है, कर्जे पर नफ़ा कमाना है। जो रकम एडवांस की होती है वो कर्ज़ा होती है, आप उस ज़्यादा रकम की वजह से किराया माफ़ करेंगे तो ये सूदी मामला हो जाएगा। जनाब साल की बात हम समझा चुके हैं कि ज़कात में निसाब के साल का एतबार करेंगे कि ज़कात कब फ़र्ज होती है। देखिए दो सवाल पूछूंगा मैं, क्या हर चीज़ पर साल गुजरना ज़रूरी है? नहीं। क्या निसाब का साल गुजरना ज़रूरी है? निसाब का जो साल है जिस दिन आप पहली मरतबा साहिब निसाब हुए उस दिन ज़कात फ़र्ज है, उससे एक दिन पहले आपकी मिल्कियत में कोई ऐसी चीज़ आई जो काबिल ज़कात थी तो उस पर ज़कात फ़र्ज होगी। इसको एक चार्ट समझ लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर हम देखें आगे बढ़ रहे हैं, किसी पर 5 शाबान को कोई साहिब निसाब हुआ, तो अब पूरा साल गुजरा और यही तारीख जब आई तो ये देखेगा कि इसकी मिल्कियत में कितने माल व असबाब मौजूद हैं, और फिर उनको हिसाब लगा के छांटी करेगा, कर्जा अलग करेगा, अजत असली अलग करेगा, और फिर जो बचेगा अगर वो शरायत पर पूरा उतरते हैं तो उसकी ज़कात अदा करेगा, वरना ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। ज़कात के हवाले से बहुत सारे सवाल जो पूछे जाते हैं, मैं बड़े मुख्तसर अंदाज में इनके जवाब दे देता हूँ। एक सवाल हो चुका है वैसे तो ज़कात और नीयत के, भी किस नीयत से ज़कात दी जाए। नीयत तो ज़कात की करनी है आपने, लेकिन ईदी कहकर देना, इनाम कहकर देना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाज लोग सदका खैरात तो करते हैं, ज़कात की नीयत नहीं करते। अगर ज़कात की नीयत बिल्कुल नहीं की तो ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात एक इबादत है और इबादात में नीयत करना ज़रूरी होता है, जितना नमाज में नीयत करना ज़रूरी है, अहराम में नीयत करना ज़रूरी है, रोज़े में नीयत करना ज़रूरी है, इसी तरीके से ज़कात की अदायगी में भी नीयत करना ज़रूरी है। माल की कीमत कौन से लगाएं? जो करंट वैल्यू होगी जिस दिन आप पर ज़कात फ़र्ज हो रही है, जिस दिन आप पर ज़कात फ़र्ज हो रही है। किसी के पास मिसाल के तौर पर सोना है और कल सोने की वैल्यू गिर जाती है और उसकी ज़कात भी कल फ़र्ज हो रही है, तो जो कल कीमत है वही लगाएगा। जिस दिन उस पर फ़र्ज हो रही है उस दिन का मार्केट रेट लगाया जाएगा। पूरे साल की तनख्वाह पर ज़कात फ़र्ज है या नहीं, इसका जवाब हम दे चुके हैं कि पूरे साल की इनकम का हिसाब रखना ज़रूरी नहीं है, निसाब के साल निसाब के दिन का हिसाब रखना ज़रूरी है। किराया जो हासिल हुआ क्या इस तमाम पर ज़कात फ़र्ज है? नहीं, जो खर्च हो गया उस पर फ़र्ज नहीं है। जिस पर कर्जा है और मुस्तहिक है तो उसको ज़कात कैसे दें? बाज़ औक़ात मार्केट में भी ऐसा होता है, खाते पीते आदमी डाउन हो जाते हैं, दिवालिया भी हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने उससे 20 लाख रुपए लेने थे, बजाय वो आपके 20 लाख रुपए दे वो तो बेचारा खुद कंगाल हो गया है। आप सोचते हैं कि मैं इसको ज़कात में छोड़ देता हूँ। नीयत आपकी अच्छी है लेकिन ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात कैसे अदा होगी? आप एक लिफाफे में डालें 20 लाख रुपए, उसके पास जाएं, उसको कहें कि ये आपके हुए, वो मालिक हो गया, मालिक हो गया ना भाई वो। अब उसको कहें कि आपने मेरे पैसे देने थे वो दो, ये लिफाफा वापस ले आए। अब आपने जो आपने कर्जा लेना था उससे माजी में आपने वो वापस लिया, ज़कात आपने दे दी है और उसको आपने रिलैक्स किया है। ये नहीं कि आपने कोई उसके साथ मजाक किया है, आपने उसको रिलैक्स किया है। यानी इसका एक तरीका ये था कि आप उसको कह देते छुटे आपको, यूँ छोड़ देने से नेकी तो थी ये, सवाब तो आपको मिलता है उसका भी, लेकिन उसमें ज़कात अदा नहीं होती। ज़कात अगर अदा करनी है तो ये तरीका अपना के आप ज़कात अदा कर सकते हैं, वरना ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात निकालने का फॉर्म है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, अमवाल का तयन कर लें। किसी के पास सोना है 10 तोले, चांदी है 20 तोले, और करेंसी है 20 लाख रुपए, माल तजारत 10 लाख रुपए, प्राइस बॉन्ड 5 लाख रुपए कितने बने जी टोटल? 55,39,400 रुपये। 55,39,400 रुपये। अब इसके ऊपर इतने सारे कर्जे हैं, इसने दस्ती कर्जा देना है, इसने उधार माल खरीदा है उसकी पेमेंट देनी है, मुलाजमीन की तनख्वाह इस पर ड्यू है इस महीने की, पूरे साल की नहीं निकालेंगे, इस महीने की जिस दिन ज़कात फ़र्ज़ हो रही है, जो किराए के दुकानों के का एडवांस लिया हुआ है वो पैसे देने हैं, बीसी वाली सूरत पाई गई जिसमें आपने पे बिल आपके पास रकम, ये टोटल रकम मिलके कितनी हुई जनाब? 9,80,000 रुपये। तो ये पूरी की पूरी रकम इससे माइनस कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा 45,59,400 रुपये। जितनी अमाउंट बची 40 से तकसीम कर दें, 40 से तकसीम करने में 2.5% निकल आया, तो इस पर ज़कात कितनी बनी? 1,13,985 रुपये। तो ज़कात का की कैलकुलेशन और हिसाब किताब कितना आसान है या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी फार्म को एक दूसरे शक्ल में देखते हैं जी। काबिले ज़कात अम्बाल किसी के पास थे? सोना 10 तोले और चांदी 20 तोले, टोटल रकम कितनी बनी? 20,39,400। ठीक है, पेबल दस्ती कर्जा फला 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 चीज़ें 5,10,000 रुपये जी हाँ। और रिसीवेबल भी है इसके पास, पहले वाले चार्ट में हमने रिसीवेबल को शामिल नहीं किया था, ठीक है, यानी रिसीवेबल आपके अपने पैसे होते हैं लेकिन आपने वसूली करनी होती है। तो भाई आपने माल बेचा है उसकी कीमत लेनी है, आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है वो आपने वापस लेना है। तो ये जो रिसीवेबल हैं ये कितने हैं मिलके? 4 लाख रुपए। ये है हाजिर माल, इस पर फौरी ज़कात निकालनी पड़ेगी इसको माइनस करके, ठीक है। ये आपका अपना माल है लेकिन हाजिर माल नहीं है, इसका हुक्म ये है कि इसकी अदायगी में ताखिर कर सकते हैं, जैसे जैसे ये मिलता रहेगा, जब ये मिलेगा तो एक फार्मूला है, जब इतना मिल गया तो अब आप पे निकालना जरूरी हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि इसको भी साथ मिला के एक साथ निकाल दिया जाए, उसमें आसानी है वरना भूल जाता है। हाजिर माल के ज़कात का हिसाब हमने बनाया तो कर्ज माइनस करके कितने बचे? 15,29,400 रुपये, और 40 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 38,235 रुपये ज़कात हाजिर माल पे बने। ये जो माल है 10 साढ़े 10 तोला चांदी, 10.5 तोला चांदी की मिकदार में ये माल जब मिल जाए तो ज़कात निकालना फ़र्ज हो जाएगा। तो 10.5 तोला चांदी की मिकदार बनती है 23,310 रुपये, यानी यको मार्च के हिसाब से। तो जिसको इसमें से इतनी रकम वापस मिली उसकी फौरी ज़कात निकालेगा, अब ताखिर नहीं करेगा। तो जनाब ज़कात के हवाले से अहम सवाल ये है कि किसको दी जाए। ज़कात का एक मेयार मुकर्रर किया है शरीयत ने, गुरबत का एक मेयार है, शरीफ फकीर को ज़कात देना ज़रूरी है। 3 चीज़ें हैं जिसको ज़कात देनी है, माली तौर पर शरीफ फकीर हो, क्या हो? चांदी का निसाब कितना बना था? जिसके पास इतनी मालियत रकम की करेंसी नहीं है, इतनी मालियत रकम का माल तजारत नहीं है, उसके घर में जो साजो सामान है ज़रूरियात के वो शामिल नहीं करेंगे, उससे हटकर मिसाल के तौर कोई पोर्ट्रेट है उसके घर के अंदर, सीनरी है, उसको शामिल करेंगे, जो जायद चीज़ें हैं वो सब शामिल करके, जो जायद चीज़ें हैं चांदी के निसाब के बराबर पैसे नहीं बन रहे उसके पास, तो ये शरीफ फकीर है। एक लकीर खींच दी शरीयत ने, इस लकीर से जो नीचे हुआ वो शरीफ फकीर मुस्तहिक ज़कात होगा, इससे जो ऊपर हुआ मुस्तहिक ज़कात नहीं होगा। बाज़ूकात ये होता है कि बाप मुस्तहिक ज़कात नहीं होता, उसके पास कुछ ना कुछ पैसे हैं, बालिग औलाद हैं, लेकिन घर में ज़रूरत है, शादी है, बीमारी आ गई और मसाइल हैं, तो उसके बेटे को ज़कात दे दिया आपने, जो पॉकेट मनी पर चलता है सिर्फ, उसके पास और पैसे नहीं हैं, یا اس کی بیوی مستحق زکوٰۃ ہے اس کے لیے بھجوا دی زکوٰۃ. تو یوں جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ سید یا ہاشمی نہ ہو. عام طور پر مشہور یہ کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, یہ بات ٹھیک ہے نہیں دے سکتے, لیکن جو بنو ہاشم ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتے, جو علوی ہے جو عباسی ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ ایسا رشتہ دار نہ ہو جس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ دو طرح کے رشتہ دار ہیں. کتنے طرح کے رشتہ دار ہیں؟ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی, ایک رشتہ ہوا. اور دوسرا اپنے والدین کو نہیں دے سکتے. والدین سے مراد ہے باپ بھی دادا بھی پردادا بھی, ماں بھی نانی بھی نانا بھی نیچے تک. ان تین قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نمبر ایک جو سید یا ہاشمی ہو ایسا رشتہ دار اس کو نہیں دی جا سکتی, اور نمبر تین مالی معیار میں پورا نہ اترتا ہو. تو دیکھیے زکوٰۃ نکالنے میں شریعت نے ایک بڑی بڑی خوبصورت بات بیان کی, ایک فارمولہ بیان کیا ہے. سب سے پہلے مستحق ہیں آپ کے رشتہ دار, پھر آپ کے پڑوسی, آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کا حق سب سے پہلے ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک چلتا پھرتا آدمی جو راستے سے گزر گیا اس کا پردہ ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا یہ کس حال میں ہے. لیکن یہ جو کیٹیگری ہے ان کے سب باتیں ہم پر کھلی ہوتی ہیں, آج کل یہ کن حالات سے گزر رہے ہیں, کیا دشواری ہے, کیا پریشانی ہے, اس لیے ان کا حق زیادہ رکھا گیا ہے. تو ان کا جو حق ہے وہ ان کو دینا ضروری ہے. مطلب اگر یہ مستحق ہیں تو ظاہر بات ہم ان کی مدد کریں گے زکوٰۃ کی صورت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. باقی یہ ہے کہ اگر کچھ حصے کر لیے جائیں آپ کی زکوٰۃ زیادہ نکلتی ہے تو آپ جو ہے وہ دینی مدارس کو بھی زکوٰۃ دیں, آپ رشتہ داروں کو بھی دیں, آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ جو زکوٰۃ کی جو جگہیں ہیں وہاں پر زکوٰۃ ادا کریں. الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پاکستان میں 1,60,000 کے قریب تو وہ افراد ہیں مرد اور خواتین جو درس نظامی کر رہے ہیں, 3,00,000 کے قریب وہ لوگ ہیں بچے اور بچیاں جو حفظ اور ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ الگ ہیں. تو دعوت اسلامی کو بھی اپنے زکوٰۃ اور عطیات میں یاد رکھیں. اس وقت کرائسس کا موسم ہے اور جن آرگنائزیشنس کی جو بنیاد اور زندگی ہے وہ چندہ ہوتی ہے تو وہ اس کرائسس میں زیادہ پریشان ہوتی ہیں, دینے والوں کے ہاتھ رک جاتے ہیں. تو آپ کے جو دینے والے ہاتھ ہیں پورا آپریشن پورا سسٹم اس سے متاثر نہ ہو. یہ سسٹم ہماری ضرورت ہے, یہ ہمیں امام فراہم کرتا ہے, یہ ہمیں قاری فراہم کرتا ہے, یہ ہمیں عالم دین فراہم کرتا ہے, یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کفن کیسے دینا ہے. دعوت اسلامی نے یو کے میں جب کرونا آیا اپلیکیشن لانچ کر دی, لوگ جو ہے نا کیونکہ جمع نہیں ہو پا رہے تھے, مردہ نہلانے والا نہیں مل رہا تھا کہ بھائی آپ کسی کو کیوں تلاش کرتے ہیں, آپ اس اپلیکیشن کو فالو کریں اور آپ خود اپنے مردے کو نہلائیں, آپ کا اپنا رشتہ دار ہے, آپ کا اپنا حق بنتا ہے. تو ڈفرینٹ دینی محاذ کے اوپر دعوت اسلامی آپ کو نظر آتی ہے, اب تو رفائی کاموں کے اندر بھی نظر آتی ہے. ترکی کا زلزلہ ہوا وہاں بھی الحمدللہ پہنچی, سیلاب ہوا وہاں بھی الحمدللہ ہم لوگ پہنچے. میں خود اندرون سندھ میں کئی جگہوں پر خود گیا ہوں اور میں نے اپنے ہاتھوں سے الحمدللہ رب العالمین 60-70 لاکھ روپے تقسیم کیے ہیں. اور ڈفرینٹ جو لوگوں نے تقسیم کیے ہوں گے, مطلب ہر شہر میں ظاہر بات ہے سیلاب میں تو ایک آہ بکا کی صورتحال تھی. میں نے ایک مطلب ایک ایسا منظر دیکھا کہ شاید کوئی وہ جو عالمی ریکارڈ بنانے والے لوگ آتے ہیں تو وہ آ کے ریکارڈ بناتے. 30 کلومیٹر کی خیمہ بستی دیکھی میں نے, اور کہنے کہ وہ خیمہ بستی بھی نہیں تھی. خیمے ہوں تو خیمہ بستی کہلائے گی نا. لوگ روڈ پر آباد ہیں کیونکہ ارد گرد زمینوں پر پانی تھا اور کسی کے پاس چادر تھی, رلی تھی, کوئی کپڑا تھا, اس کو انہوں نے باندھ کے خیمے بنائے ہوئے تھے. اکا دکا کے پاس خیمے ہوں گے. 30 کلومیٹر تک یہ صورتحال تھی. 30 کلومیٹر آپ بتائیے کتنی بڑی آبادی افیکٹ ہوئی ہوگی. دعوت سامی ایسے لوگوں کے پاس پہنچی, راشن فراہم کیا, مختلف طرح سے ان کی مدد کی اور ان کی اعانت کی. تو ان کو بھی نہ بھولیں. اگر ہمارے پاس وقت ہے تو مدنی چرن کی کال لے لیتے ہیں, پھر ہم یہاں کی لے لیں گے, حاضرین کی لے لیں گے.
अभी मुफ्ती साहब ने जो एक साहब ने सवाल किया था तो उस पर जो उन्होंने जवाब दिया है कि अगर किसी को अगर आप जक़ात देना तो आपकी नियत होनी चाहिए, उसको आप जाहिर ना करें। जबकि कहा यह जाता है कि अगर किसी को जक़ात दी जाए या सदका दिया जाए तो बता के देना चाहिए। अब इसी तरह से अगर देखें, अगर सैयदों पर जैसे जक़ात और सदका जायज़ नहीं है, ठीक है, अगर हम बता कर ना दें तो, और कोई अगर सैयद ज़्यादा और हमें पता भी ना हो तो कहते हैं वो तो गुनाह के जमरे में आ जाएगा ना देने वाला, तो इसलिए कि लेने वाले को तो पता ही नहीं होगा, इसलिए बता के देना चाहिए। जरा ये बात जरा क्लियर कर लीजिएगा।
मैं आपका सवाल सुन सका सही से, कुछ ये समझ में आया मुझे कि सैयद ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम होगी, तो सैयद की तो तहकीक करनी है ना आपको। आपको पता सैयद नहीं है, जो सैयद होते हैं मशहूर ही होते हैं, जहाँ शुबा है वहाँ पूछ लें, बातों बातों में पूछ लें सैयद है या नहीं, फिर अगले दिन आके देखें कि भाई ज़कात उनको जिस तरीके से देनी है इज्जत के साथ, सैयद नहीं है तब भी इज्जत के साथ देनी है, सैयद है तो ज़कात दे ही नहीं सकते उनको। तो ये डिफरेंट चीज़ें, इनमें कोई तजाद नहीं है। जी
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, किसी को अदार माल दिया है, वो पैसे नहीं मिल रहे, क्या उस पर भी ज़कात देनी होगी? जब वो पैसे मिलेंगे उस वक्त देनी होगी या हर साल देनी होगी या एक साल उसकी ज़कात देना काफी है? इसके बारे में शरी रहनुमाई फरमा दीजिए।
एक शर्त हमने बयान की थी पूरी तरह कब्जे में, जिसका मिलने की उम्मीद है उसकी तो जो है वो ज़कात हर साल ही जाएगी। बाज़ औक़ात डेड अमाउंट आ जाती है तो उनका अलग हुक्म है, वरना रिसीवेबल में ज़कात हर साल की फ़र्ज होगी। अब किसी के अगर जीपी फंड में रकम जमा हो रही है 20 साल के बाद मिलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक साल की निकालेगा, निकालेगा सारे सालों की। इसलिए मैंने कहा था कि हर साल निकालते रहें, वो ज़्यादा आसान है। वरना तो रिसीवेबल में आप को छूट कितनी है वो मैं बयान कर चुका हूँ।
मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अगर किसी पर 2015 में ज़कात वाजिब हुई तो अब वो ज़कात देना चाहता है तो कौन सी कीमत के हिसाब से ज़कात देगा, यानी पिछले बार जो सोने की कीमत थी उस हिसाब से ज़कात देगा या मौजूदा कीमत के हिसाब से, रहनुमाई फरमा दीजिए।
देखिए मौजूदा कीमत का एतबार तो नहीं लगाएगा, ये जिस साल ज़कात फ़र्ज हुई थी उस साल जो मालियत थी उसी का हिसाब लगाएगा। असल तो पुरानी चीज़ को अदा कर रहा है, पुराने जो रेट थे उसी को सामने रखते हुए अदा करेगा। मन चले के नाज़रीन आप हमारे साथ रहे, आपके सवाल भी शामिल होते रहे, आपने प्रेजेंटेशन भी मुलाजा की, यहाँ जो हाजिर मौजूद थे इनके सवाल भी आपने मुलाजा किए, आपसे हम इजाज़त चाह रहे हैं, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।